ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत नाज से। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही उड़ीसा में विधानसभा की शेष 42 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक 11.31% मतदान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 14% से अधिक, उत्तर प्रदेश में करीब 13, पश्चिम बंगाल में 12.5, झारखंड में 12 से अधिक, चंडीगढ़ में 11.5, बिहार में 10.5, पंजाब में करीब 10, उड़ीसा में लगभग 7.5% मतदान की खबर है। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने मतदान में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि विशेष रूप से युवा और महिला मतदाता रिकॉर्ड संख्या में मतदान करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एग्जिट पोल में हिस्सा न लेने का कांग्रेस का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि उसने लोकसभा चुनाव के नतीजों को पहले से ही स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कांग्रेस ने अच्छी तरह से स्थापित चुनावी प्रक्रिया को खराब करने के लिए अपमानजनक मांग करते हुए बार बार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 8.2% होने का अनुमान है। इससे पहले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष में स्थिर कीमतों पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद 173 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह वृद्धि इस बात का उदाहरण है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। बाढ़ के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। रेमल चक्रवात के बाद लगातार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से 11 जिलों में लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में जारी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और झारखंड में आज गर्मी की स्थिति जारी रहेगी। देश के उत्तर पूर्वी भागों तथा पश्चिम बंगाल में अगले 6 दिनों में वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। दक्षिण केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 6 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के ध्यान पर हैं। श्री मोदी आज अपना ध्यान पूरा करेंगे और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे तिरुवनंतपुरम लौटेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उन्होंने शुक्रवार को मौन ध्यान शुरू किया था। कठपुतली कला के प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री मघुनी चरण कुंवर का आज सुबह उड़ीसा के क्योंझर में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और कई महीनों से अस्वस्थ थे। रॉड कठपुतली की लुप्त होती कला को जीवंत रखने और पारंपरिक रॉड कठपुतली नृत्य को आजीवन बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर विदेशी क्षेत्र है। पाकिस्तान के अपर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कश्मीरी शायर अहमद फरहाद शाह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस हिरासत में है और उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र विदेशी भूमि है जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से गजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए इसराइल के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। 3 हिस्सों का ये प्रस्ताव 6 सप्ताह के युद्धविराम के साथ शुरू होगा, जिसमें इजरायली रक्षा बल गजा के आबादी वाले इलाकों से हट जाएंगे। इसके साथ ही मानवीय सहायता भी बढ़ेगी, साथ ही फलस्तीनी कैदियों और कुछ बंधकों की अदला बदली भी होगी।